Hello, and welcome to episode 1 of the Inclusive Pleasure Project. I am Chaitali, a learner, performer, and writer, traveling in sync with the feminist principles to be a part of a change-making process. I am a fellow of Ori Kalankini's 13-week yearly fellowship program. The fellowship brings together change-makers to engage for 13 weeks in 13 micro-advocacy projects. We meet amazing people from various organizations and upskill ourselves to do advocacy in a fun way. This series of episodes are for cisgendered, heterosexual men, women who identify or express themselves within a normative boundary. To start thinking about pleasure in ways that are beyond the normal, the market, and the mainstream. The series will help you explore questions which otherwise are considered irrelevant, insane, and sometimes blasphemous. Early philosophers extensively defined pleasure in all of their ethical writings. From Plato to Aristotle, arguments have traveled generations to define pleasure as a category other than that defined as a feeling. While Sigmund Freud also wrote on the pleasure principle, we see that a variety of observations were made in reference to pleasure and how only a kind of pleasure dominates its other aspects. While there are still findings that tell us how unexplained the pleasure principle is, we see a brutal absence of where, how, and on whom is the principle applicable. Is it applicable in the margins? Is it applicable to those who identify as queer? Is the understanding of penetration limited to a section, a group, a category of people? Is pleasure seeking or pleasure giving a format for the privileged? All these questions are not everyday questions, because these questions have stigma attached in the most peculiar fashion. Interjection by stigma makes it impossible for these principles to travel to people who are systematically excluded from the mainstream. Today, we have with us my friend and comrade who works as a sex worker and is a prominent leader of the country's largest sex worker network. She speaks what she must and is never afraid to resist power, privilege, and authority. Let us hear her speak on how she understands pleasure.
हर बार ऐसा नहीं कि हर क्लाइंट के साथ इंटरकोर्स हो तो प्लेजर होगा, नहीं. प्लेजर वहाँ होता है जब किसी कस्टमर ने आके मुझसे बातें की, मेरे बारे में जानने की कोशिश की, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई, कैसे इस काम में आ गई. इस तरीके की चीजें होती है तो खुद को प्लेजर महसूस होता है कि हाँ, इस काम में होने के बाद भी उस इंसान ने मेरे बारे में पूछा, उसने मेरी लाइफ को जानने की कोशिश की, उसने ये महसूस किया कि मैं जो भी कर रही हूँ वो सिर्फ अपनी फैमिली को चलाने के लिए कर रही हूँ, तो वो एक प्लेजर और खुशी मुझे देता है वो मोमेंट. उसके अलावा कभी किसी ने मेरी मनपसंद चीज के बारे में पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है, क्या खाना पसंद करती हो, कौन सी मूवी तुम्हें पसंद है, या आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, तो वो उस समय एक प्लेजर होता है, एक मोमेंट होता है कि हाँ, कि ये चीजें हैं जो हमारी इस रोजमर्रा की कमाने वाली जिंदगी में कहीं ना कहीं मुझे एक आनंद दे जा रही है, प्लेजर दे जा रही है. तो वो सब चीज कभी कभी महसूस होती है. रोज तो फिर हमें अपना वर्क करना है, कमाना है और जिंदगी काटनी है इस तरीके से.
तो क्या प्लेजर को सेक्सुअल या फिजिकल प्लेजर यानी यौनिक और शारीरिक आनंद के अलावा भी समझा जा सकता है?
बिल्कुल दिया जा सकता है. देखिए, हमको प्लेजर उसी इंसान से मिलता है जिससे हम दिल से जुड़े. हर ग्राहक के साथ तो हमें प्लेजर नहीं मिलता, पर हमें उसे महसूस कराना पड़ता है कि हाँ, वो मुझे प्लेजर दे रहा है, ताकि वो हर बार मेरे पास ही है, उसे निराशा ना हो, क्योंकि हर भी कोई आ रहा है वो कुछ ना कुछ उम्मीद लेके हमारे पास आ रहा है. तो हम उनको प्लेजर महसूस कराते हैं, पर कुछ ऐसे हैं जिनके साथ हम खुद प्लेजर जीना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो यूनिक सेट के द्वारा इस तरीके से टच किया, उसने इस तरीके से हमें प्यार किया, तो हमको बहुत प्लेजर महसूस होता है उस टाइम कि हाँ सिर्फ ये फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करने आए, इसको अपना नहीं कि सिर्फ अपना कि मेरा काम हुआ और मैं भागता हूँ, पैसा दे रहा हूँ तो मैं कैसे भी उसको यूज कर सकता हूँ उसकी बॉडी को। जब ऐसा नहीं होता और वो इंसान हमारे साथ अच्छे से अपनी जो शारीरिक इच्छा है उसको एक पूरी करने की कोशिश करता है, तो एक अलग ही फ्लेवर होता है।
मोर देन ऑफन वी टेंड टू रिप्लेस द आइडिया ऑफ पेनिट्रेशन विद प्लेजर. With available technology and the knowledge that films, humor, and general society gives us, we equate pleasure with a sense of feeling. Is it anything beyond feeling? Does it stay in our bodies or hop into our minds right after the accomplishment of socially defined orgasms? Because if we understand it this way, we tend to forget the narrative of pleasure in work. Is sex work not pleasurable then? Does not the dominance of emotions fail in this context? I asked my friend a similar question, and here is what she responded.
पर वो penetration तब हमारे लिए pleasure हो जाता है, तब हमें लगता है कि सिर्फ penetration के लिए नहीं आया, वो जो हमारे साथ टाइम बिता रहा है उसको हर तरीके से जीने आया इंसान हमारे साथ। हम साथ में खा रहे हैं, हम ड्रिंक कर रहे हैं, हम अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, हम एक दूसरे को जोक सुना रहे हैं, हम एक दूसरे को सॉन्ग सुना रहे हैं, इस तरह की जो उस दौरान जो होती है, और उसके बाद जब इंटरकोर्स होता है ना तो उसमें एक अलग ही आनंद आता है। फिर पेनिट्रेशन के अलावा जब इतनी सारी चीजें हमारे साथ होती हैं तो वो एक अलग ही प्लेजर, इतने सारे होते हैं जो हमारे पास आने वाले जो कस्टमर होते हैं वो इतना अच्छे से एंजॉय करते हैं, अपने सुख दुख हमारे साथ शेयर करते हैं, अपनी फैमिली में क्या हो रहा है वो हमें बताते हैं, तो उन सारे चीजों के साथ जब पेनिट्रेशन होता है ना तो अलग ही सुख देता है कि हाँ हम किसी के साथ हैं, किसी के साथ अपनी जिंदगी की।
If we engineer and seek for the truth, we would only find an iota of it. The response was a reflection of a business which exchanges pleasure for money, and sometimes the feeling that follows it. How should then one place the system of marriage? Keeping in mind that marriage will not always mean consent, can we not say that it is also a business shared by two parties? Let us listen to what my friend has to say on her marriage and where did her journey of pleasure giving and seeking start.
कभी कभी ऐसा होता है कि जिस इंसान के साथ हम जी रहे हैं, जिसके साथ हमारी शादी हुई है, उसके साथ हमें प्लेजर कभी महसूस ही नहीं किया हो, तो ऐसा शायद मेरे साथ था। मुझे नहीं पता कि शारीरिक सुख क्या होता है और चीजें क्या होती हैं, या सेक्स के दौरान या पेनिट्रेशन के दौरान इतना कुछ, मतलब कितना आनंद भी आता है। और सब मेरे को अपनी शादीशुदा जिंदगी के कम से कम 15 सालों तक तो मुझे नहीं पता था। उसके बाद तब मेरा एक फ्रेंड बना, उसके साथ जब मैंने पहली बार सेक्स किया तो मुझे पहली बार महसूस हुआ कि यार सेक्स करने के बाद भी इतना अच्छा लगता है लाइफ में, मैंने वो सुख अपनी लाइफ में कभी महसूस ही नहीं किया था। तो ये मेरी एक स्टोरी है। उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, मुझे अब जब मैं कहीं भी अपना कुछ बात रखती है, इस तरीके से ऐसे होते हैं संभोग को लेके, पेनिट्रेशन को लेके, तो मैं कहती हूँ उन लोगों से जो मुझे सुन रहे होते हैं कि आप अपने घर में, अपनी फैमिली में क्या, जब आप अपनी वाइफ के साथ एक बिस्तर पे होते हैं तो उसको इच्छाओं को जानने की कोशिश करो, या महिलाओं से भी कहती हूँ कि वो अपने पति की इच्छाओं को जानने की कोशिश करो ताकि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी को उस पल को अच्छे से जी पाए और अपने आप को लॉन्ग टाइम तक मतलब कि स्वस्थ और एक तरह से वो जो दिमाग में एक होता है ना अजीब सी जो फीलिंग होती है कि हाँ मैं रोज तो अपने पति के साथ एक बिस्तर पे हूँ पर मुझे वो सुकून नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अपने एक अपना पार्टनर है तो उसको अपनी सब इच्छाएं जाहिर करनी चाहिए और किस तरीके से हम उस पल को जी सकते हैं दोनों को शेयर करके उस पल को जीना चाहिए, शर्माना या अपनी बातें ना बताना, तो वो जिंदगी हमेशा परेशानी में और झिल्लाहट में बीतती है।
There are 100 stories like these which are different and do not respond to the universal knowledge. As allies, let us ask questions, dive deep into the depths of what is known and felt, and find a way for inclusion and intersectionality. Hope this episode gives you content to think and ponder upon. You may agree or disagree. Only think and bring to the table all that has to be thought about. Please do check out other episodes of this series and also other awesome series on our channel, Ori Kalankini, in all major podcasting platforms. See you then. Goodbye. By the people, by us, you don't know this? By the people, by us, you don't know this? By the people, by us, you don't know this? By the people, by us, you don't know this? By the people, by us, you don't know this? By the people, by us, you don't know this? By the people, by us, you don't know this? By the people, by us, you don't know this? I have seen the royal kitchens cook deer meat every day. I have seen the royal kitchens cook deer meat every day. I have seen the royal kitchens cook deer meat every day. I have seen the royal kitchens cook deer meat every day. If you were having a baby in the village, you would be given extra. Everyone says it's great for your bones. If you were having a baby in the village, you would be given extra. Everyone says it's great for your bones. If you were having a baby in the village, you would be given extra. Everyone says it's great for your bones. If you were having a baby in the village, you would be given extra. Everyone says it's great for your bones. If you were having a baby in the village, you would be given extra. Everyone knows it's great for your bones. It's only strange to the royals in the palace. Out there, everyone lives the same way. It's only strange to the royals in the palace. Out there, everyone lives the same way. It's only strange to the royals in the palace. Out there, everyone lives the same way.